हे परमपिता परमात्मा, हम अपने हृदय की गहराइयों से जीवन के परम आनंद को अनुभव कर सकें और उसे हर क्षण जी सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ओम तत्सत परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति। ही परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के बाद अब हम ईशावास्य उपनिषद पर जो हमने महत्वपूर्ण सीखा था, हम उसको सार रूप में फिर से देख रहे हैं। तो ईशावास्य उपनिषद में हमने कहा था, इसके अलग अलग भाग हैं। पहले भाग में हमने जो उसके डायमेंशंस थे उनके बारे में बात की। तो पहला डायमेंशन हमको क्या मिला कि मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? तीन अलग अलग तरीके से हम जीवन को अप्रोच करते हैं। मार्ग एक ही है पर तीन चीज़ों की ध्यान रखते हुए हम जीवन को कैसे जिए, सबसे पहले हमने उसके बारे में बात की। दूसरा जो डायमेंशन है, उस दूसरे डायमेंशन में हमने किसके बारे में बात की? जो मार्ग हम जी रहे हैं, मतलब जीने वाला कौन है, यात्री कौन है, सेल्फ, वो सेल्फ कौन है कि वो मेरी आत्मा, तो आत्मा कौन है कि आत्मा सुपरमात्मा। तो कल के सत्र में हमने कहा सबसे पहले जीवन को कैसे जीना चाहिए, ऐसे सोच के कि मेरे भीतर भी वही परम तत्व, वो परमेश्वर है, मेरे बाहर भी वही परम तत्व, वही परमेश्वर है, और उस परमात्मा का स्मरण रखते हुए वर्तमान क्षण में अपने कर्म में प्रवेश करना अपने श्रेष्ठतम ज्ञान के सहारे। दिस थिंग आई मस्ट डू दिस वे और दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे। ज्ञान के आलोक में कर्म को करना इस भाव से भरकर कि मेरे भीतर की सारी शक्ति उस परमात्मा की दी हुई है और ये जो कर्म मैं करता हूँ ये मेरा दायित्व है। तो ये भाव से भरकर, ये वो मार्ग है, राजमार्ग, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी बात कि मैं कौन हूँ, जाना किस पथ पर है वो दिख गया, अब जाने वाला पथिक कौन है। तो पथिक की तरफ हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि ये शरीर भी है, ये ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा ये भी है, मन भी है, भीतर जो है वो प्रज्ञा है, ज्ञान है, सब है, लेकिन जो सच्चा स्वरूप है, जो परम स्वरूप है, वो क्या है कि वो ब्रह्म स्वरूप है। हमारा जो सच्चा स्वरूप है वो चैतन्य रूप है, शुद्ध चेतना, विशुद्ध चेतना, वो हमारा सच्चा रूप है। और वो कैसी है कि जीवन के पूरे डायमेंशंस को उसने अपने से भर रखा है, सर्वत्र वही 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 है। तो इसलिए ना चलते हुए भी वो चल पाती है, इसीलिए वो बिना गति के भी जो सबसे अधिक गतिशील है उससे तीव्र है। तो बहुत सारे इस भीतर के अनंत रूप को थोड़ा जान लिया, थोड़ा समझ लिया, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो जो अगले मंत्र हैं उनमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो 6 मंत्र तक हमने किया, 7वें मंत्र पे भी कल थोड़ी सी हमारी बात हुई थी, पर थोड़ा सा इसको और देखते हैं। 7वां मंत्र क्या है? ये 7वां मंत्र कहता है कि जब हम जो भी हमको दिखता है चारों तरफ, चाहे वो दूसरे जीव हैं, चाहे वो दूसरी चीज़ें हैं, जो भी हमको दिखता है, वो जब हमारे साथ एकाकार में आते हैं, जब हम पूरे अस्तित्व की जो एक रूपता है उसको हम समझ पाते हैं, तो सही मायने में हम जीवन को समझ पाते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ दी, मतलब एग्जैक्टली नॉट हियर, पर थोड़ा सा अलग जाके देखें, हम कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया पिछले 200 सालों में, विज्ञान ने कितनी तरक्की की, कितने मानव ने तरक्की की। अब इस तरक्की के पर्सपेक्टिव को अगर ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे गांव जो इतने सुंदर थे आज प्लास्टिक से भरे पड़े हैं। इतने सुंदर सुंदर हिल स्टेशंस, लेकिन अगर चारों तरफ देखो तो गंदी मतलब चीज़ें, प्लास्टिक की बॉटल्स, कचरा, शराब की बोतलें, इतना इतनी सुंदर सुंदर प्राकृतिक जगहों पे भी टूटे हुए कांच। और तो हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, तो हमको तो सुंदर बनाना चाहिए चीज़ों को। आज का विश्व तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो आज ही की दुनिया में हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पृथ्वी पर पहले कभी भी नहीं थे। लेकिन हुआ क्या, क्या पृथ्वी आज अपने सुंदरतम रूप में है कि नहीं? हमने इसकी भूमि को पॉल्यूट कर दिया, हमने इसकी वायु को पॉल्यूट कर दिया, हमने इसके जल को पॉल्यूट कर दिया। अब आप कहेंगे कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन तरंगों के रूप में चारों तरफ फैला है, लगातार वो हमको नुकसान पहुँचा रहा है। हमने इसकी ओजोन की परत को बिगाड़ दिया, और तो और हमने इसके समंदरों को बिगाड़ दिया, हमने इसके जंगल नष्ट कर दिए। तो ये ठीक वैसे ही है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में जो सबसे श्रेष्ठ हो सकता था, जो सबसे सुंदर था, वो पृथ्वी मनुष्य को मिली थी, और हम दिन प्रतिदिन उसको नष्ट करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमको लगता है कि ये जो अस्तित्व है ये अलग है, ये भोग की वस्तु है, ये पूरा संसार, ये पूरी लीला इसलिए है कि मैं इंजॉय कर सकूं। तो मैं ये खा लूं, मैं ये पी लूं, मैं ये पहन लूं, ये मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, वो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा। कैसे होगा, इजंट इट? तो कल एक बड़ी रेलेवेंट सी अजीब सी बात है, स्कूल में ना अंजलि मैम पढ़ाते हैं बच्चों को, उन्होंने कल एक पुस्तक का पेज का फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया। तो उसमें कैसे लिखा था कि जीवन में कुछ भी हमें चाहिए, छोटी सी चीज़, छोटी सी चीज़, लेट्स से किसी व्यक्ति को ना कॉफ़ी पीनी है या चाय पीनी है, तो चाय पीने के लिए उसने क्या किया, कॉफ़ी पीने के लिए क्या किया, कप उठाया, कॉफ़ी मशीन के नीचे रखा, बटन दबाया, कॉफ़ी बन के आ गई, पी ली, एक तरीका। दूसरा, वही कॉफ़ी उसे पीनी थी, वो जंगल में है, अब वो ढूंढ रहा है थोड़ी सूखी लकड़ियाँ, फिर वो थोड़ा सा देखता है कॉफ़ी बीन्स कहाँ मिलेंगी, फिर उन कॉफ़ी बीन्स को लेता है, फिर उसको थोड़ा सा ग्राइंड करता है, फिर वो पानी को उबालता है, फिर वो सारी उस प्रोसेस से होके गुजरता है। क्या होगा, एक थोड़ी कठिन प्रक्रिया है जिसमें ये तो बड़ा मुश्किल है, और एक बहुत ही कन्वीनियंट प्रोसेस है। मुझे ये बताइए, किस प्रक्रिया में ज़्यादा मज़ा आएगा, किस में ज़्यादा सुकून मिलेगा, किस में ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी? देखो, आप कितने छोटे बच्चे हो, लेकिन आपने भी तुरंत चुन लिया, जो कठिन वाला है ना उसमें अच्छा लगता है। ऐसे क्यों अच्छा लगता है, पीने तो बटन दबाया, काम हो गया। पर हमारे को प्रकृति ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमको उसमें आनंद की अनुभूति होती है। तो ये बहुत सुंदर बात है। यहाँ पर पूरा जो अस्तित्व है, पूरी जो प्रकृति है, जब हम महसूस करते हैं कि ये मुझसे अलग नहीं है, ये हमसे अलग नहीं है, जब मैं प्रकृति को क्षति पहुँचा रहा हूँ तो मैं स्वयं को ही क्षति पहुँचा रहा हूँ, ये भाव आना चाहिए। तो ये कौन सा विस्तार है, ये म का ही विस्तार है। ये पूरे जंगल क्या है, ये जंगल मेरे ही फेफड़े हैं। ये पूरी नदियाँ क्या हैं, ये नदियाँ मेरे शरीर जो है मोर देन 70% जो है वो पानी से बना है। औसत भी पकड़े 65% 70%, आप तो बायोलॉजी के विद्यार्थी हो, जानते हो। तो सोचो, तो ये सारी नदियाँ क्या हैं, मेरा शरीर ही तो है, मेरे भीतर जो 70-75% जो वाटर है वो कहाँ से आता है, नदी से आता है। अगर वो पॉल्यूट हो गई तो किसको पॉल्यूट कर दिया मैंने, भीतर के उस 70% को पॉल्यूट कर दिया। अगर बाहर की हवा को पॉल्यूट कर दिया तो क्या होगा, बिना ऑक्सीजन के जी पाएंगे क्या? तो ये जो भीतर जो ऑक्सीजन है वो तो खराब होती जाएगी, दिक्कत आती चली जाएगी। फिर आप सिलेंडर मुंह पे लगाए घूमते रहना, मजा आएगा क्या फिर? तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। तो वो कहते हैं सबसे पहले अपने इस अनंत स्वरूप को अनुभव करो और महसूस करो कि ये जंगल, ये पेड़, ये आकाश, ये नदी, पृथ्वी, पानी, सब तुम्हारा ही रूप है। तुम इनसे अलग नहीं हो, ये तुम्हारा ही शरीर है और तुम ही हो। ये बात अगर समझ में आ जाए तो जीवन जीने के सही मायने समझ में आ जाए। तो ये एकत्वम की जो बात की, इसको समझाया सातवें मंत्र में। अब आठवां जो मंत्र है वो क्या कहता है, उसको भी जरा देख लो एक बार। आठवें मंत्र में कि इतना विराट, इतना बड़ा, इतना पूरा, जो पूरा अस्तित्व है, नदी, पहाड़, जंगल, और ये तो एक धरती है हमारी पृथ्वी के जैसे, कितनी पृथ्वी होंगी ब्रह्मांड में? तो एक मोटा मोटा अनुमान है कि करीब करीब 40,000 करोड़ तो हमारे गैलेक्सी में है। हमारी जो गैलेक्सी है उसमें है। तो अलग अलग एस्टिमेशन है। एक एस्टिमेशन में कहते हैं करीब करीब 400 बिलियन प्लैनेट्स हैं। ओ गॉड, 400 बिलियन प्लैनेट्स, उनमें से एक हमारा, कितना है, कितना ज्यादा है? और ये इतने सारे प्लैनेट में से एक जो हमारा प्लैनेट है, हमारी जो पृथ्वी है, कैसे घूमती है, कैसे उस पर ऋतुएं बनती हैं, कैसे उसके ऊपर सूर्य का आना, प्रकाश का पड़ना, फसलों का पकना, कितना अद्भुत तो है ये सब। कैसे फूल खिलते हैं, कैसे उनकी खुशबू का हम अनुभव करते हैं, कैसे चिड़ियाएं महकती हैं। तो फिर वो धीरे से क्या बोलते हैं कि ये जो पूरा विराट है, ये जो पूरा अनंत प्रकृति है, इसको चलाने वाली एक शक्ति है पीछे। वो जो इनको चलाने वाली एक अनंत शक्ति है, वो शक्ति को क्या कहते हैं? वो कैसी शक्ति है कि वो ओमनिशियंट है, वो ट्रांसेंड है, वो सेल्फ एग्जिस्टिंग है। वो एक ऐसी शक्ति है जो, मतलब जिसको काम करने के लिए मांसपेशियों की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको काम करने के लिए जो है कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सबको जो है, इन सारे तारों को, सारे ग्रहों को, सारे ब्रह्मांड को, और ये तो एक गैलेक्सी की बात कर रहे हैं कि एक गैलेक्सी में 400 बिलियन प्लैनेट्स हैं। गैलेक्सीज कितनी है? तो पहले तो कहते थे 100 बिलियन है, अब हमारे पास नया टेलीस्कोप आ गया, तो जब से हमारे पास, पहले हमारे पास हबल था तो कहा करीब करीब 100 बिलियन, अभी जब से हमारे पास जेम्स वेब करके नया टेलीस्कोप आया है, कह रहे 200 बिलियन। हमारे ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मांड हैं? पता नहीं, देर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस। तो ये सबको साथ में जोड़ के रखने वाली जो जो अनंत शक्ति है, वो शक्ति क्या है? तो कहते हैं वो शक्ति ही तो आप हो, उसी परम शक्ति का अंश आपके भीतर है। और ये बात जब बोल दी तो सोचो कितनी बड़ी बात बोल दी। यू आर दैट जिसने इन असंख्य ब्रह्मांडों को जोड़ के रखा है, आप वो हैं, वो शक्ति आपके भीतर है, वो शक्ति जो इतनी गैलेक्सीज को, इतने इतने प्लैनेट्स को चलाती है, वो शक्ति आप हो, उसका जो अंश है वो आपके भीतर है। तो ये आपका, आपसे परिचय कराया किस रूप में, एक अनंत शक्ति के रूप में, दैट इज ऑल प्रवेडिंग, दैट इज ब्राइट, दैट इज बॉडीलेस, दैट इज इमेक्यूलेट, दैट इज विदाउट मसल्स, दैट इज प्योर, दैट इज अनप्रिजर्व्ड बाय इविल्स, कि वो ऐसी है कि बुराई उसे छू भी नहीं सकती, स्पर्श भी नहीं कर सकती, ऐसी अद्भुत शक्ति है जो वाइज है, ओमनिशियंट है, ट्रांसेंड है, सेल्फ एग्जिस्टिंग है। अब बताओ, और हम अपने आप को कितना छोटा सा समझते हैं। तो ईशावास्य उपनिषद जो है वो हमें अपने उस अनंत स्वरूप का स्पर्श कराता है, ज्ञान कराता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो है अपने विश्व रूप का जो है दर्शन देते हैं। तो यहाँ इन चार मंत्रों में ईशावास्य उपनिषद आपको आपके विश्व रूप का जो है दर्शन कराता है। दिस इज रियली वंडरफुल। और इन चार मंत्रों के बाद, इन चार मंत्रों पे मंथन, चिंतन, मनन और धीरे 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 इनको डाल लें जी, और स्वयं अनंत हो जाएं। कहते हैं कि जो अनंत की खोज पे निकलता है वो अनंत ही हो जाता है। जब हमारी खोज और सोच छोटी होती है तो हम छोटे हो जाते हैं। तो ईशावास्य उपनिषद ने हमारे लिए सारे दरवाजे खोल दिए? नहीं, सारे दरवाजे ही हटा दिए। कोई दरवाजा है ही नहीं। वो कहते हैं तुम वो बूंद हो जो सागर में समा जाए, और तुम्हारे चारों तरफ अनंत चेतना का सागर है, अनंत ऊर्जा और चैतन्य का सागर। कहते जुड़ तो जाओ, डूब तो जाओ, इससे तुम अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन एक बार इसको अनुभव करने के प्रयास में खो जाओ। एन एक्सपीरियंस दैट यू आर ऑल प्रोवाइडिंग कॉन्शियसनेस, यू आर इटर्नल, यू आर इटर्नल ब्लिस। तो ये आपको अपने सच्चे स्वरूप का भान कराने के लिए। तो चार मंत्रों से कहा कि आप कौन हैं, तो ये चार मंत्र आपने पकड़ लिए होंगे, आपको बात समझ में आ गई। एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा करके याद दिला देता हूँ कि आपका जो सच्चा स्वरूप है वो आत्मस्वरूप, आपका भीतर से आप क्या हो। कि ये शरीर छूट जाएगा, इस शरीर को चलाने वाली जो जैविक ऊर्जा है वो शरीर के साथ ही थम जाएगी। इस शरीर के भीतर उठने वाले जो विचार हैं, जो भाव हैं, जब मनोमय कोश गिरेगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। और उसके पीछे जो बोध है, मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं हूं, आई एम, मैं प्रेम हूं, मैं जयेश हूं, मैं कौशिक हूं, ये जो होने का जो भाव है, ये विज्ञानमय कोश, ये भी गिर जाएगा एक 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 पल पर, एक घड़ी पर। जैसे हमको बहुत ठंड लगती है ना, तो हम जैसे कपड़े की अलग अलग लेयर पहनते चले जाते हैं कि ये तो तुम्हारे अस्तित्व की लेयर्स हैं, दीज आर द डिफरेंट लेयर्स, ये गिर जाएंगे और फिर पीछे क्या रह जाएगा, वही अनंत आनंद रूप, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य रूप। और वो तो साफ साफ कहा कि तुम सोचते हो कि इन शब्दों में तुम उसे कह पाओगे, कोई शब्द उसे कह नहीं सकता, कोई भाव उसे पकड़ नहीं सकता, वो इतना विराट, इतना अनंत है, और वही आपका सच्चा स्वरूप भी है। तो इन चार मंत्रों में आपके सच्चे स्वरूप की व्याख्या कर दी हमारे मनुष्यों ने, हमारे ऋषियों ने अपने जीवन के अनुभव को इन चार मंत्रों में रखा, ताकि हम उससे प्रेरित हो सकें, उससे स्पंदित हो सकें, उससे हम भी जागृत हो सकें और उस अनंत और विराट के साथ एक हो सकें। तो ये आत्म परिचय था, पहले मार्ग के बारे में बताया तीन मंत्रों में, और अगले चार मंत्रों में फिर कहा कि इस पथ पर चलने वाला, इस मार्ग पर चलने वाला वो पथिक कौन है उसके बारे में बताया। अब वो पथिक कहाँ है, वो जगत क्या है, उसके विषय पे कल हम बात करेंगे। आज के सत्र में इतना ही। ओम तत्सत परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।